समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
या साहिब अल जमाल व बयान सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नवर अल कमर مرحبا سیدی مکی مدنی العربی।
जी हाँ, आज का दिन समर्पित है इस्लाम मजहब के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को। उनके जीवन और शिक्षाओं का सम्मान करने, उनकी विरासत को याद करने, उनके दान, करुणा और विनम्रता जैसे मूल्यों के संदेश पर अमल करने और पैगंबर मोहम्मद साहब की शांति और दया के पैगाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का एक मौका। आज देश के विभिन्न भागों में मिलादुन्नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। देश के कुछ भागों में जुलूस भी निकाले जाते हैं।
Well, as Naeem highlighted, the birthday of Prophet Muhammad is celebrated as Miladun Nabi. Also, President Draupadi Murmu has extended her greetings to the citizens, especially Muslim community, on the occasion of Miladun Nabi. In her message, President Murmu said, "The Prophet inspired everyone to strengthen the feelings of love and brotherhood and stressed on equality and harmony in society."
इस खास संदेश के बाद शुरू करते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आकाशवाणी गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ आज के आज सवेरे में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। कैसी हैं शगुन?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हेलो नईम, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। And over the next half an hour, we will bring you the latest national and international news. Also, we'll provide you metro city updates and we'll explore the history of today, that is 16th of September. So, make sure listeners to stick around till the end with us.
Lekin sabse pehle headlines?
Yes, we will begin with the headlines first.
Ji.
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 4th RE Invest Global Industrial Meet at Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Modi will also flag off the second phase of Ahmedabad Metro, connecting Ahmedabad to Gandhinagar and GIFT City. Prime Minister will also interact with the beneficiaries of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana today. Later in the day, Mr. Modi is scheduled to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth over 8,000 crore rupees, which include country's first Vande Bharat Metro train between Ahmedabad and Bhuj. The 4th Reinvest Global Renewable Energy Meet and Expo has been organized by the Union Ministry of New and Renewable Energy. The meet will highlight India's impressive progress in renewable energy manufacturing and deployment. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will be present at the inaugural session.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे उद्यमशीलता इकोसिस्टम के अंदर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत को नवाचार और उद्यमिता में ग्लोबल लीडर के रूप में बदलने के सरकार के विजन के अनुरूप है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भास्कर स्टार्टअप्स निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के बीच के अंतर को पाटेगा, जिससे सभी क्षेत्रों में निर्बाध बातचीत हो सकेगी।
कैंपेनिंग इज इन फुल स्विंग फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। 24 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज विल गो टू पोल्स इन दिस फेज ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ। सीनियर बीजेपी लीडर एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल एड्रेस 3 रैलीज टुडे एट रामबन, किश्तवाड़ एंड पडर एरियाज ऑफ द चिनाब वैली। 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द चिनाब वैली इन जम्मू डिवीजन आर गोइंग टू पोल्स इन द फर्स्ट फेज। इलेक्शन कैंपेन हैज ऑल्सो पिक्ड अप पेस फॉर सिंगल फेज असेंबली पोल्स इन हरियाणा। Voting for the 90 member state assembly will be held on the 5th of October. Interacting with the media in Karnal yesterday, Haryana election in charge and BJP leader Dharmendra Pradhan said the BJP government in the state worked in the interest of farmers, women and youth during the last 10 years.
भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत भारत की ओर से 10 लाख डॉलर की राहत सामग्री वियतनाम भेजी गई है। कल विशेष विमान से 35 टन राहत सामग्री वियतनाम भेजी गई। इसमें जल शोधन सामग्री, पानी रखने के लिए कंटेनर, कंबल, रसोई के सामान और सौर लालटेने शामिल हैं। भारत ने 10 टन राहत सामग्री विशेष विमान से लाओस भी भेजी है। इनमें सफाई में काम आने वाले सामान, कंबल, मच्छरदानी और मच्छरनाशक, स्लीपिंग बैग, जनरेटर सेट, पानी की सफाई करने वाली मशीनें, इस काम में आने वाले टैबलेट और कीटाणुनाशक शामिल हैं। इस बीच सूखी खाद्य सामग्री, कपड़े और दवाइयों की 10 टन सहायता सामग्री INS सतपुड़ा से कल शाम को म्यांमार भेजी गई। भारत उन देशों में से है जिन्होंने आपदा प्रभावित देशों को सबसे पहले मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन सद्भाव आसियान क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत में योगदान के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो देश की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार चलाया जा रहा है।
Swachhata Hi Seva Abhiyan 2024 will start tomorrow and continue till 2nd October. The theme for this year is Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata. The campaign includes mega cleanliness drives at various sites such as tourist locations, public buildings, commercial areas, water bodies, zoos, sanctuaries and community and public toilets through Shramdan and collective action. All central government ministries and states are planning various citizen engagement activities across the country. This year's campaign is built around 3 key pillars under the whole of society approach. These are cleanliness target units CTU, Shramdan activities, Swachhata Mein Jan Bhagidari and Safai Mitra Suraksha Shivir. The campaign will engage citizens, industries, NGOs, development organizations, urban local bodies, panchayats and various stakeholders nationwide. Under the whole of government approach, all states, union territories, chief ministers, central ministries and local bodies will participate to ensure a nationwide movement for cleanliness.
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में आज चीन के हुलिनबुईर में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच न हारने वाली एकमात्र टीम है। भारत चीन को 3-0 से, जापान को 5-1 से, मलेशिया को 8-1 से, कोरिया को 3-1 से और पाकिस्तान को 2-1 से हराने के बाद एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कोरिया से मुकाबले को लेकर उत्साहित है। इस बीच दिन के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान चीन से होगा।
From hockey, let's turn our attention to chess. In the 45th Chess Olympiad, Team India in the open section sealed the match 3-1 against Azerbaijan, while the women's team defeated Kazakhstan by a margin of 2.5 to 1.5 in round 5 at Budapest yesterday. In the open section, Gukesh secured an easy victory as his opponent, GM Aydin Suleimanli, lost a pawn and subsequently wrecked his position. The world championship challenger made no mistakes and was the first to win on the top board. Arjun Erigesi scored his 5th win in a row, outplaying GM Rauf Memdev with the white pieces in an endgame. GM Pragnanand had a comfortable draw with the black pieces against Nijat Abasov, while compatriot Vidit Gujarati missed a winning chance and eventually ended up drawing his game. Team India continues to lead the leaderboard.
और शगुन, अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का वक्त है। सबसे पहले कहां की खबर दे रही हैं आप?
यस नेम, आई विल बिगिन विद चेन्नई।
ओके,
30 pilgrims from Kodalur district, Tamil Nadu, were stranded at Uttarakhand due to the landslides yesterday. They dialed up the state government for rescue. The matter was taken up immediately by the chief minister and in turn to the Uttarakhand government, which acted swiftly and rescued the pilgrims. They are presently safe in a camp and in a couple of days are expected to return to Chennai via Delhi. Staying with Chennai, the Department of Design at IIT Roorkee, in partnership with the Design Innovation Center and the Department for Promotion of Industry, and successfully hosted a two-day workshop under the One District, One Product initiative at Chennai. The workshop highlighted the significance of academic and local stakeholder collaboration and said that the efforts in the Vocal for Local initiative are aimed at empowering local farmers, enhancing regional economies, and fostering community development. The challenges faced by the local farmers, including traditional weeding and harvesting practices, were addressed. It also had an impact by equipping local sugarcane farmers with the knowledge and tools necessary for modern and sustainable jaggery production.
दिल्ली से जो मेरे पास खबर है शगुन, उसमें अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT से चलने वाली बसों के लिए नया स्टैंड शुल्क लागू हो गया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि संशोधित शुल्क केवल फास्टैग आधारित प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा और बिना फास्टैग के किसी भी बस को टर्मिनल परिसर में प्रवेश करने और परिचालन की इजाजत नहीं दी जाएगी। नया स्टैंड शुल्क कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां स्थित ISBT से चलने वाली सभी बसों पर लागू होगा। जिन बस ऑपरेटर्स ने फास्टैग नहीं लिया है उन्हें इन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर में जगह नहीं मिलेगी।
सो नईम फ्रॉम दिल्ली, लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू बेंगलुरु।
ओके,
द रेल व्हील फैक्ट्री इन बेंगलुरु इज ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज टू फॉलो द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। इट्स एम्प्लॉईज विल टेक द स्वच्छता प्लेज एडमिनिस्टर्ड बाय इट्स जनरल मैनेजर आर राजागोपाल। To create awareness among the young blood, a painting competition is organized in the Kendriya Vidyalaya tomorrow. It has planned intense cleaning of the office and shop floor from September 18 to 20th. Another awareness program is organized on September 21, when through walkathon, the message of clean environment and clean city will be disseminated to the public. The rail wheel factory will take up cleaning of staff canteen along with washrooms and cleaning of water bodies within its premises. On September 26 and 27th, it will arrange a medical camp for the Safai Karamcharis. Their Swachhata Hi Seva campaign will culminate on October 2nd on the Gandhi Jayanti Day.
मुंबई से मेरे पास दो खबरें हैं शगुन। पहली खबर शायद ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और वो देना हमारे श्रोताओं के लिए जरूरी है।
एब्सोल्युटली
जी। रेलवे अतिरिक्त यात्री भीड़ को समायोजित करने के लिए LTT मुंबई और गोरखपुर और पनवेल और छपरा के बीच विशेष ट्रेनों की 62 यात्राएं चलाएगा। LTT मुंबई गोरखपुर द्विसाप्ताहिक स्पेशल में 40 यात्राएं 26 सितंबर से 30 नवंबर 2024 तक चलेंगी। ट्रेन नंबर 05326 गुरुवार और शनिवार को LTT मुंबई से 10:25 पर रवाना होगी और अगले दिन 6 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 05325 मंगलवार और गुरुवार को गोरखपुर से 9:15 रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 7:15 LTT मुंबई पहुंचेगी। पनवेल छपरा साप्ताहिक स्पेशल 22 यात्राओं वाली 22 सितंबर से 1 दिसंबर 2024 तक चलेगी। 05070 रविवार को रात 11:20 से पनवेल से रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 11:35 पर छपरा पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 05069 शनिवार को 1:15 छपरा से रवाना होगी और अगले दिन 8 बजे पनवेल पहुंचेगी। तो ये ऐसी जरूरी सूचनाएं थी जो आने वाले त्योहारों के मौसम के लिए हमारे श्रोताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी।
राइट, वेरी नेसेसरी फॉर द पैसेंजर्स।
जी, और एक और खबर है मुंबई से ही। बृहन मुंबई नगर निगम आगामी 17 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस की तैयारी कर रहा है। पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव को बढ़ावा देने के लिए BMC ने 204 कृत्रिम विसर्जन झीलों की व्यवस्था की है और नागरिक QR कोड के माध्यम से इन झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल 12,000 बीएमसी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और सुचारू विसर्जन जुलूस सुनिश्चित करने के लिए 71 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन हैदराबाद।
जी,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बंदी संजय कुमार हैज एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑन तेलंगाना लिबरेशन डे इन प्रिजर्विंग द लेगेसी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। द मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ फोटो एग्जीबिशन शोकेसिंग द स्ट्रगल्स अगेंस्ट निजाम्स रूल ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन एट द परेड ग्राउंड्स इन सिकंदराबाद। He also highlighted Sardar Vallabhbhai Patel's pivotal role in liberating Telangana through Operation Polo on the occasion. Appreciating the efforts made by the CBC for reminding future generations of the historical struggles against Nizam's atrocious rule, the minister emphasized preserving the legacy of freedom fighters like Kumaram Bhim, Chakali Ailamma and Kondal Lakshman Bapuji. Speaking on the occasion, Mr. Sanjay Kumar said the exhibition vividly showcased the valiant efforts against the Nizam's rule. The three-day event is being organized grandly alongside the official event of the Hyderabad Liberation Day being organized by the Union Home and Culture Ministries tomorrow. It may be recalled that the state government is observing September 17th as Praja Palan Dinotsavam.
और चलते चलते एक खबर कोलकाता से भी ले लेते हैं, चलते चलते कार्यक्रम से नहीं है, महानगरों की खबरों से.
एब्सोल्युटली
जी, एक खबर कोलकाता से मेरे पास है. पश्चिम बंगाल के गंगा तट पर बने गहरे दबाव के कारण दक्षिणी पश्चिम बंगाल के जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश हुई है. ये आज झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने और धीरे धीरे दबाव का रूप ले लेने की संभावना है. पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. कोलकाता समेत दक्षिण पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने की चेतावनी दी गई है. और प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों के मौसम के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं.
एब्सोल्युटली
जी, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
नईम, वेल इट्स मच द सेम इन अदर मेट्रो सिटीज ऑल्सो, लाइट रेन इज देयर.
हमारा भारत एक है ना, इसलिए
राइट. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज. बेंगलुरू इज ऑल्सो expected to have generally partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky again with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
जी, और अब बात कर लेते हैं आज की तारीख की. 17 सितंबर है आज. 17 सितंबर को इतिहास में क्या क्या 16 सितंबर है आज. 16 सितंबर को इतिहास में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं. 16 सितंबर 1630 को अमेरिका के बॉस्टन शहर की स्थापना हुई थी. 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था. 1957 को मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था.
In 1967, Tibetan, Indian and Chinese troops engage in fighting at Nathula Pass on the Tibet-Sikkim border.
1974 में बांग्लादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाउ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे. 1982 में भारत और सिलोन यानी श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था.
In the year 1990, Air India established a world record by evacuating more than 1.11 lakh people in 8 weeks from Kuwait, Iraq during the Gulf War. In the year 1995, Prime Minister inducted 16 new members into his Council of Ministers and elevated 3 deputy ministers to the rank of Ministers of State. In the year 1996, first one-day international was played in Canada between India and Pakistan at Toronto.
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, लेकिन उससे पहले दो घटनाएं मुझे और याद आ रही हैं आज ही की तारीख की. 2006 में भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर रवाना हुई थी और 2017 में कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी पीवी सिंधु. तो ये हुई हमारी आज की यानी कि 16 सितंबर के इतिहास की बात. अब 16 सितंबर को हमारे इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कौन कौन सी हस्तियां आई और कौन कौन हमें अलविदा कह गई, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नईम, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इन दिस सेगमेंट अबाउट एम एस सुबुलक्ष्मी. इंडियन कर्नाटिक सिंगर
जी, बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है.
एब्सोल्युटली. एंड देर आर लॉट्स ऑफ फर्स्ट हियर इन हर करियर. शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न एंड शी रिसीव द अवार्ड फॉर अ डिस्टिंग्विश्ड करियर एज अ सिंगर इन द कर्नाटिक ट्रेडिशन. ऑल्सो She is the first Indian musician to receive the Ramon Magsaysay Award and the first Indian to perform at the United Nations General Assembly. And for listeners, for you, we have this beautiful rendition of Ganesh Strotam by her.
Mudakaratamodakam sadavimuktisadhakam kaladharavatam sakam vilasilokarakshakam मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं गताशुभाशुं नाशकं नमामि तं विनायकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नतेतरातिभीकरं नवोदिताशभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् नतेतरातिभीकरम् नवोदिताकभास्वरम् नमत्सुरारिनिर्जरम् नताधिका.
वेल, सच अ ब्यूटिफुल रेंडिशन. Also, moving on now, today we are also remembering Ronald Ross, British medical doctor who received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in the year 1902 for his work on the transmission of malaria. Ross was a polymath, writing a number of poems, publishing several novels and composing songs. He worked in the Indian Medical Service for 25 years. It was during his service that he made the groundbreaking medical discovery. Now, moving on in this section, we are also remembering Maria Callas, operatic soprano, who was one of the most renowned and influential opera singers of the 20th century. Many critics praised her for her bel canto technique, wide-ranging voice and dramatic interpretations. Her repertoire ranged from classical opera seria to the bel canto operas. And for you listeners, we have the song, her live performance basically, Puccini, O Mio Babbino Caro.
शगुन, एक बहुत बड़ी हस्ती का की पुण्यतिथि है. नाम है जिनका डॉक्टर कपिला वात्सायन. जिन्होंने भी इनका नाम सुन रखा है वो जानते हैं कि ये इनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है. 16 सितंबर 2020 को अपनी ही दिल्ली में इनका निधन हो गया था. आज इनकी पुण्यतिथि है और इत्तेफाक की बात है कि दिल्ली में ही इनका जन्म भी हुआ था.
राइट.
भारतीय कला की एक प्रमुख विद्वान थी. पद्म भूषण से सम्मानित थी. राज्यसभा की भूतपूर्व मनोनीत सदस्य थी. प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की पत्नी थी. और इसके साथ एक और बड़ी बात यह थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो यहां से आकाशवाणी भवन से बहुत दूर नहीं है, इसकी पहली अध्यक्ष भी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ही रही।
द फर्स्ट।
जी जी। 60 के दशक से कपिला वात्स्यायन अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति के संवर्धन में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उनके जो पिता थे वो जाने माने वकील थे, मां जो थी उनकी वो सत्यवती मलिक अच्छी लेखिका और कला संगीत प्रेमिका भी थी। अगर खुद कपिला वात्स्यायन के बारे में बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और मिशिगन से इतिहास में भी एमए किया, यानी कि ये डबल एमए थी, दो बार उन्होंने पीजी की थी। जी। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे विद्वान के निर्देशन में विशेष छात्र के तौर पर इतिहास, पुरातत्व और वास्तुकला में भी शोध किया। प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार की पत्नी होने के साथ साथ ये उन्होंने भरतनाट्यम, मणिपुरी और आधुनिक पश्चिमी नृत्यों की भी शिक्षा ली थी और अच्छन महाराष्ट्र से उन्होंने कथक सीखा था।
जी। नईम, व्हेनेवर वी आर डाउन विद फीवर व्हिच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज? व्हाट डू वी यूज? राइट। सो टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। ही हैज इन्वेंटेड थर्मोमीटर्स accurate and consistent enough to allow the comparison of temperature measurements between different observers using different instruments. Well, he was a physicist, inventor and scientific instrument maker. Fahrenheit is also credited with inventing mercury in glass thermometers, more accurate and superior to spirit fill thermometers at the time. Very, very useful instrument, as we all know, right?
Yes. Uske bagair to hamara koi si bhi bimari aage badhti nahi hai.
Absolutely. The popularity of his thermometers led to the widespread adoption of his Fahrenheit scale attached to his instruments.
जी, पुण्यतिथियों में अगला एक और नाम मेरे पास जो है बहुत बड़ा नाम है, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुरे, जिनकी शहादत आज ही के दिन यानी 16 सितंबर को 1965 में हुई थी। AB तारापुरे के पुरखों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से था, जिन्हें वीरता के पुरस्कार स्वरूप 100 गांव दिए गए थे। और इसी वजह से, क्योंकि उन गांवों में एक गांव का नाम तारापुर था, इसीलिए ये सभी लोग तारापुरे कहलाए। कर्नल AB तारापुरे को परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। और अगर ये कहा जाए कि वो सचमुच देश का गौरव थे तो ये भी शायद उनकी शान में कहना छोटी बात होगी।
वेल यस।
जी
जी। नाउ वी आर रिमेम्बरिंग EC जॉर्ज सुदर्शन। इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। फिजिसिस्ट EC जॉर्ज सुदर्शन। प्रोफेसर सुदर्शन हैज बीन क्रेडिटेड विद न्यूमरस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, इंक्लूडिंग दीज पर्टिकुलर इनोवेशंस, ग्लोबल सुदर्शन पी रिप्रेजेंटेशन इनोवेशंस एंड हिज अचीवमेंट्स। आई एम पॉइंटिंग देम आउट नाउ। वी एट थियोरी टेकियंस, क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम एंड क्वांटम मास्टर इक्वेशंस, स्पिन स्टेटिस्टिक्स थ्योरम, नॉन इनवेरियंस ग्रुप्स, पॉजिटिव मैप्स ऑफ डेंसिटी मैट्रिसेस एंड क्वांटम कंप्यूटेशन। एंड नदीम, ही रिसीव्ड पद्म विभूषण इन द ईयर 2007 एंड ऑल्सो पद्म भूषण इन द ईयर 1976।
जी। जयंतियों में अगर हम नाम लें तो एक नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक श्याम लाल गुप्त पार्षद का, जिनका जन्म 16 सितंबर 1893 को हुआ था। वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो गीत है जो सभी भारतीय अच्छी तरह जानते भी हैं, गाते भी हैं, जी, उसके भी रचयिता थे। और देशभक्ति गीतों में ये एक अलग ही गीत है, जिसके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहें उतना थोड़ा है।
इट वोक्स द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग्स पीपल, राइट।
जी। अच्छा, दो नाम मेरे पास फिल्मों से भी हैं अभी।
जी जी।
एक तो जयंतियों में ही आता है, और जैसे ही मैं कहूंगी राम लक्ष्मण, हर किसी इंसान को, सुनने वाले को, उनकी फिल्मों के नाम, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ये सभी एक के बाद एक याद आते चले जाएंगे।
Right.
तो अगर हम संगीतकार राम लक्ष्मण की बात करें तो उनका असली नाम राम लक्ष्मण नहीं बल्कि विजय पाटिल था।
जी।
और संगीतकार राम लक्ष्मण की जोड़ी में से एक थे लक्ष्मण, जिनका नाम विजय पाटिल था, और जो जोड़ीदार राम थे उनका नाम राम सुरेंद्र था, और दोनों ने मिलकर जो अपनी जोड़ी बनाई राम लक्ष्मण के नाम से बनाई। और एक और नाम जो है वो आज आज उनका जन्मदिन है वो है प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी, जो आज ही के दिन इस दुनिया में आया, उनका जन्म हुआ। तो अभी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं और गीत सुनवाने का वक्त नहीं है, वरना इन सभी के गीत सुनवाना भी जरूरी था, लेकिन वक्त घड़ी की सुइयां कह रही है कि इजाजत ली जाए, तो इजाजत लेते हैं। अनुमति दीजिए आज सवेरे कार्यक्रम खत्म करने की मुझे नईम अख्तर और
शगुन चोपड़ा। नमस्कार।